पूज्य श्री स्वामी अखंडानंद जी महाराज की जय। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज की जय। शन्नो मित्र शन वरुण शन्नो भवद्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुक्रम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायु त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तदवक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति 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 ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणयामदेवाः भद्रं पश्येम क्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गै स्तुष्टु वा संस्तनुभिर्यशेम देवहितम् यदायु स्वस्ति न इन्द्रो व्रतश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्ष्रो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु ॐ शान्ति 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 ॐ नाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यम् करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः 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 हरि ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरि ॐ
नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे परमाद्वैतविज्ञानं कृपया यो ददाति वै सोऽयं गुरुर्गुरु साक्षात् शिव एव न संशय शङ्करं शंकराचार्यं केशवं बादरायनं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने योमवदव्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः ॐ शांति 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 ही।
यजुर्वेदीय ईशावास्योपनिषद के आठ मंत्रों का विचार गत वर्ष के सत्र में हम लोगों ने किया था। बाकी दस मंत्रों का विचार अवशिष्ट है। इसे ही परसों के प्रवचन में निर्धारित हुआ कि पूरा किया जाए। ईशावास्योपनिषद के 18 मंत्रों में से प्रथम मंत्र और द्वितीय मंत्र ये दोनों संपूर्ण उपनिषद के प्रतिपाद्य अर्थ को संक्षेप में बताते हैं। समस्त उपनिषदों का प्रतिपाद्य विषय शास्त्राधिकारी मनुष्य के दो प्रकार के अवांतर भेद से दो प्रकार का है। कुछ मनुष्य हैं जो आत्मा का वास्तविक स्वरूप है उसका विचार करने में समर्थ, साधन चतुष्टय संपन्न है, नित्यानित्य वस्तु विवेक, क्या नित्य है क्या अनित्य है इसका अच्छी तरह से विवेक जिन्हें है, और अनित्य वस्तु जो अनात्मा संसार है उसमें अनित्यता साधन पारतंत्र्य आदि कई दोष होने के कारण, और उन दोषों का निश्चय होने से जो अभी तक दोष का निश्चय न होने के कारण संसार के प्रति मन का आकर्षण था जिसे राग कहा जाता है, वह संसार में विद्यमान अनित्यतादि दोष के निश्चय के कारण निवृत्त हो गया है अंतःकरण में से जिन लोगों के। नित्यानित्य वस्तु विवेक का फल ही है अनित्य से विरक्ति वैराग्य, और जो नित्य वस्तु है उनके प्रति मन का आकर्षण, उसके प्राप्ति की इच्छा उत्कट इच्छा, ये नित्यानित्य वस्तु विवेक का फल है। जब शास्त्र नेत्र से हम आत्मानात्मा का विचार करते हैं तो अनात्म वस्तु अनित्य रूप से निश्चित होती है, विचार का फल होता है निश्चय। तो जब आत्मा और अनात्मा का विवेक करते हैं शास्त्र के अनुसार तो शास्त्र बताता है कि अतो अन्यत आर्तम, अतः यानि परमात्मा से, आत्मा से अन्यत यानि भिन्न जो है वह आर्त है। परमात्मा के आर्त कहते हैं कल्पित को, मिथ्या को। तो परमात्मा के ही अज्ञान से अनात्मा भास रहा है, जैसे रस्सी के अज्ञान से सर्प भासता है, सुक्ति के अज्ञान से रजत भासता है, सूर्य किरणों के अज्ञान से सूर्य किरणों में जल प्रतीत होता है, ऐसे आत्मा के अज्ञान से अनात्मा की प्रतीति हो रही है। और ये अनात्मा उत्पन्न हुआ है, अनित्य उसे कहते हैं जो उत्पन्न हो और नष्ट भी हो। तो अनात्मा संसार उत्पन्न हुआ है, नष्ट होता है, इसलिए अनित्य है, शास्त्र तो ये बता रहा है। और जो आत्मवस्तु है उसका न जन्म होता है न मृत्यु होती है, न जायते म्रियते वा कदाचिन, नायम भूत्वा भविता वा न भूय। और इस प्रकार का नित्यानित्य वस्तु विवेक जिसको हुआ है, तो इस विवेक की पहचान है, निश्चय की पहचान है कि जिसे हम अनित्य समझ रहे हैं उसके प्रति जो हमारे बुद्धि का आकर्षण है वो समाप्त हो जाता है। तो आकर्षण का ही नाम है राग। तो राग समाप्त हुआ बुद्धि में से, तो माना जाता है उस वस्तु के विषय में विराग हो गया, वैराग्य हो गया। तो ये वैराग्यात्मक अंतकरण में वृत्ति भी जिसके आ गई है विवेक का फल भूता। और अभी तक आप देखते हैं कि मन विक्षिप्त क्यों होता है, इसलिए होता है कि हम बाह्य अनुकूल वस्तुओं को चाहते हैं, वह प्राप्त नहीं होती, उसकी प्राप्ति के लिए प्रवृत्त रहते हैं, कुछ न कुछ सोचते रहते हैं। प्रतिकूल पदार्थ आए हैं उनको निवृत्त करने के लिए सोचते रहते हैं, ये सोचना ही तो विक्षेप है मन में। अनुकूल पदार्थों की प्राप्ति का चिंतन, प्रतिकूल पदार्थों के निवृत्ति अनुकूल चिंतन, ये विक्षेप है। जब बाह्य पदार्थों में से राग द्वेष की निवृत्ति हो गई, तो फिर उनके प्राप्ति के लिए या निवृत्ति के लिए मन में चिंतन नहीं होगा। तो इसी का नाम होता है शम। वैराग्य का फल है शम दमादि षट संपत्ति। वह शम दमादि षट संपत्ति भी जिसके अंतकरण में आ गई है। और नित्य वस्तु एक परमात्मा ही है, इसका निश्चय होने से उसके प्राप्ति की इच्छा का नाम है मुमुक्षा। तो इस प्रकार ये जो साधन चतुष्टय है एक अंतकरण के धर्म है। एक प्रकार से नित्यानित्य वस्तु विवेक भी, वैराग्य भी, समाधि षट संपत्ति भी और मुमुक्षा भी। तो मनुष्यों में देखे जाते हैं कुछ मनुष्य का चित्त इन चार प्रकार के साधनों से युक्त है, तो ऐसे मनुष्यों को कहा जाता है साधन चतुष्टय संपन्न व्यक्ति। उनके लिए वेद अलग साधन बताता है परमात्मा प्राप्ति का। उनके लिए जो साधन बताया जाता है उसका नाम है ज्ञान। इसलिए भगवान ने गीता में कहा कि लोकेस्मिन द्विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानग। हे अर्जुन, मैंने पहले मनुष्यों के अंतःकरण की दो प्रकार की स्थिति देख करके उनके उद्धार के लिए दो साधन बताए हैं। तो गीता में सांख्य कहा गया इन्हीं साधन चतुष्टय संपन्न मनुष्यों को, तो जिनके अंतःकरण में ये नित्यानित्य वस्तु विवेकादि साधन चतुष्टय हैं, उनके लिए तो मैंने ज्ञान निष्ठा बताई है, ज्ञान योगे न सांख्या नाम और कर्म योगे न योगी नाम। और योगी कहा जाता है जिनके अंतःकरण में अभी ये साधन चतुष्टय रूपी धर्म नहीं है। साधन चतुष्टय संपन्न जो नहीं है वे हैं योगी कर्माधिकारी, उनके लिए कहते हैं योग यानि कर्मानुष्ठान रूपी साधन मैंने पहले ही बताया है, ऐसा भगवान गीता में कहते हैं अर्जुन को। पहले कहां बताया, कैसे बताया, तो इन्हीं दो मंत्रों से ईशावाश्यमिदं सर्वम, इस मंत्र से भगवान ने साधन चतुष्टय संपन्न व्यक्तियों के लिए जिनको सांख्य कहा गीता में ज्ञान निष्ठा बताई है। और योगी शब्द से भगवान गीता में जिनको कह रहे हैं कर्माधिकारी को, उनके लिए कुर्वन नेवेह कर्माणि जिजि विशेत शतम समाह, इस मंत्र से कर्म निष्ठा बताई है भगवान ने। वेद भी भगवान का उपदेश है, ब्रह्म सूत्र में शास्त्र योनित्व नाम का एक अधिकरण है, तीसरा अधिकरण पहले पाद का ही प्रातःकालीन स्वाध्याय में, जो आप लोगों में से स्वाध्याय में आते हैं उन्हें मालूम है कि शास्त्र योनित्व एक अधिकरण है। और उसमें बताया गया है कि शास्त्र का योनि यानी कारण परमेश्वर है, वेद शास्त्र है वेद, और वेद का उपदेष्टा परमेश्वर है। और ये स्वयं वेद ही बता रहा है, यो ब्रह्मानं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तंह देवमात्म बुद्धि प्रकाशम मुमुक्षुर वै शरणमहं प्रपद्ये। इस मंत्र में ये कहा गया कि भगवान जब सृष्टि बनाते हैं तो इस सृष्टि के अध्यक्ष के रूप में अपनी प्रथम संतान के रूप में ब्रह्मा जी को बनाते हैं। यो ब्रह्मानं विदधाति पूर्वं, सबसे पहले परमेश्वर से कौन उत्पन्न हुए हैं, ब्रह्मा जी, और फिर उनको जगत का शासन करने के लिए और आने वाले प्राणियों के उद्धार के लिए वेद प्रदान करते हैं। यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै का मतलब भगवान ने ब्रह्मा जी को उत्पन्न करके, प्रजापति को उत्पन्न करके प्रजा के हित का उपदेश करने वाले वेद का प्रथम उपदेश किया भगवान ने। गीता में लोकेस्मिन् द्विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ, इसमें पुरा शब्द का अर्थ यही है कि सृष्टि के प्रारंभ में ही जब हमने ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया तो उन्हें जगत के कल्याण के लिए दो साधन भी बताए हैं। वे दो साधन हैं ज्ञान और कर्म। और कौन से मंत्र से बताए, तो कहते हैं ईशावाश्योपनिषद के प्रथम दो मंत्रों से, ईशावाश्यम इदं सर्वं यत्किंच जगत्यान जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था मा गृध कस्यस्विद् धनम्। यह मंत्र ज्ञान निष्ठा का संक्षिप्त स्वरूप बताता है, उपक्रम है एक प्रकार से। और इसी मंत्र की व्याख्या है तीसरे मंत्र से आठवें मंत्र तक, ज्ञान निष्ठा का विस्तृत स्वरूप बताया गया है। और कुर्वन नेवेह कर्माणि जिजी विषेत शतम समाह यह मंत्र बताता है कर्मनिष्ठा को। जो कर्म करते हुए ही जीना चाह रहे हैं, अंतकरण में जगत के कारण परमात्मा का विचार करने की शक्ति नहीं है, साधन चतुष्टय से संपन्न बुद्धि न होने से, बुद्धि की योग्यता की अपेक्षा होती है ज्ञान रूपी साधन में सफलता अर्जित करने के लिए। वह जिसके बुद्धि में नहीं है योग्यता, ऐसे व्यक्ति के लिए कुर्वन नेवेह कर्माणि जिजी विषेत शतम समाह एवं तुई नान्य थेतोस्थी न कर्म लिप्यते नरे यह मंत्र कर्मात्मक एक साधन बता रहा है। इस मंत्र में ये कहा गया कि जिजी विषेत शब्द के अनुसार तो ये अर्थ निकल रहा है कि जीने की इच्छा करें, लेकिन ऐसा कौन है जो जीने की इच्छा नहीं करता हो। जीने की इच्छा तो स्वाभाविक है, जिजी विषा कहते हैं जीने की इच्छा को, ये प्रत्येक में स्वाभाविक है, स्वतः प्राप्त है, और जो स्वतः प्राप्त है स्वाभाविक है उसका विधान नहीं होता। इसलिए कुर्वन नेवेह कर्माणि जिजी विषेत शतम समाह यह मंत्र जीने की इच्छा करो ऐसी शिक्षा नहीं दे रहा है। जीने की इच्छा तो पहले से ही है, लेकिन ये कह रहा है कि जीना, जो जीना चाह रहे हो तो ऐसा ही जीना चाहो कि कर्म करते हुए। कुर्वन एव जिजी विषय का मतलब है कि शास्त्र ने जो आपके उद्धार का साधन बताया है उस साधन का अनुष्ठान करते हुए ही जीने की इच्छा करो। तो यहाँ कर्म का अनुष्ठान प्रधान है। कुर्वन नेवेह कर्माणि, शास्त्र ने मनुष्य के उद्धार के लिए बताए हुए जो कर्म है, अपने अपने वर्णाश्रम उचित कर्म, उनका अनुष्ठान करते हुए ही मनुष्य को 100 साल तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। नहीं तो साधन नहीं हो रहा है और ऐसे ही जी रहे हैं, कोई लाभ नहीं है। मनुष्य जीवन का लाभ है ये कहा जाता है कि अधोक्षज है परमात्मा, उसमें प्रीति हो जाए, परमात्मा की प्राप्ति, यह मनुष्य जीवन का परम लाभ है। और वह जो मनुष्य जीवन का परम लाभ है उसकी प्राप्ति यदि हो रही है जीने से तो जीना है, और उसकी प्राप्ति बिना साधन के होगी नहीं। और हम विचारात्मक साधन करने में, वेदांत का श्रवण मनन करने में असमर्थ हैं, तो कर्म करते हुए जीने की इच्छा करो ये कह रहा है। क्योंकि ये कहते हैं कि यदि तुम ज्ञान का अनुष्ठान नहीं कर पा रहे हो, श्रवण मनन निधि ध्यासन नहीं कर पा रहे हो और मुक्त होना चाहते हो, कर्म बंधन से लिपायमान नहीं होना चाहते हो, तो कहते एवं तो ही नान्य थेतोस्थि न कर्म लिप्यते नरे। जब मनुष्य शरीर में तादात्म्य अभिमान अत्यधिक है, एक क्षण के लिए भी अपने आप को हम शरीर इंद्रिय मन से पृथक नहीं समझ पा रहे हैं, और इस प्रकार का विचार कभी भी बुद्धि में नहीं आता, उसे कहा जाता है नर। नर है मनुष्य शरीर, मनुष्य को नर कहते हैं, और मनुष्य ही मैं हूं ऐसा दृढ़ निश्चय जिसका है और वह मुक्त होना चाहता है, कर्म बंधन से मुक्त होना चाहता है, कर्म का फल जो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम है इससे मुक्त होना चाहता है। उसे कहा गया कि कर्मानुष्ठान करते रहना, इसे छोड़ करके दूसरा कोई उपाय तुम्हारे पास नहीं है। एवं तोई नान्यथे तोस्ती न कर्म लिप्यते नरे, इस मंत्र की ही व्याख्या करते हुए तृतीय अध्याय में भगवान ने कहा गीता के कि न कर्मणा मनारंभात नैष्कर्म्यं पुरुषो श्नुते न च संन्यासना देव सिद्धिं समधिगच्छति। कहते कर्मानुष्ठान किए बिना नैष्कर्म्य शब्दित जो मोक्ष है मुक्ति है वह ऐसे व्यक्ति को मिल नहीं सकती जो नित्यानित्य वस्तु विवेकादि साधन चतुष्टय से रहित है, अंतकरण की शुद्धि जिसके नहीं हुई है, मल और विक्षेप से रहित अंतकरण जिसका नहीं है, ऐसे व्यक्ति को कर्म और उपासना का अनुष्ठान किए बिना केवल कर्म त्याग से मुक्ति नहीं मिलती। न कर्मणा मनारंभात नैष्कर्म्यं पुरुषो श्नुते, ये शास्त्र बता रहा है। इसी को ईशावास्योपनिषद के द्वितीय मंत्र में एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे, इससे कहा है। तो इस प्रकार ये जो कुर्वन् नैवेह कर्माणि जिजीविषेत शतम् समाः एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे, यह मंत्र कर्माधिकारी मनुष्यों को जिनको गीता में भगवान ने योगी शब्द से कहा उन्हें कर्म रूपी साधन का विधान करने वाला है। इससे भगवान ने उन मनुष्यों के उद्धार का साधन कर्म और उपासना ये बताया है। इसी मंत्र की व्याख्या है एक प्रकार से अवशिष्ट 10 मंत्र जिनका विचार हम लोगों को इस सत्र में करना है।